તારીખ 15/5/1996 શ્રી સહાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન નંબર 8 અને 9 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 7
ત્યારે શું દ્રવગુણ પર્યાય યથાર્થપણે સમજાય, અને સચ્ચિદાનંદ એવો જે શબ્દ છે આત્મામાં, એમાં ચિદાનંદ પહેલા સત શબ્દ કેમ લીધો છે, આ બે પ્રશ્નો પડ્યા છે. સમાધાન, હું આત્મા ધ્રુવ શાશ્વત હયાતી વાળી એક વસ્તુ છું, સત વસ્તુ છું એમ જ્ઞાનમાં પહેલા નક્કી થવું જોઈએ. પોતાની હયાતી, આત્મા તરીકેની હયાતી એમ જ્ઞાનમાં. પ્રશ્ન ક્યાં હૈ કે અપના અસ્તિત્વ યથાર્થ પ્રણે ગ્રહણ હોને સે હી દ્રવગુણ પર્યાય કા સચ્ચા જ્ઞાન હોતા હૈ. એક પ્રશ્ન વો હૈ, ઓર દૂસરા પ્રશ્ન હૈ કે સચ્ચિદાનંદ એસા જો આત્મા કા વાચક શબ્દ હૈ, ઉસમે સત શબ્દ પહેલે ક્યો લિયા હૈ. ऐसे दो प्रश्न हैं. समाधान है कि मैं आत्मा ध्रुव शाश्वत मौजूदगी, जिसकी मौजूदगी है, ऐसी मौजूदगी वाली एक वस्तु हूं, ऐसा ज्ञान में प्रथम निश्चित होना चाहिए. ज्ञान में ऐसा निश्चित होना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरी ध्रुव मैंने हमेशा मौजूदगी रहती है, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ. उसमें एक अस्तित्व गुण नहीं, मौजूदगी में अकेला अस्तित्व गुण नहीं, परंतु पूरा पदार्थ मौजूदगी वाली वस्तु हूं. मौजूदगी अकेली वो बात नहीं है, मौजूदगी वाली वस्तु हूं. तो अकेला अस्तित्व गुण उसमें नहीं आता, परंतु ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरा हुआ पूरा पदार्थ हो ऐसा आता है. वस्तु आई ना, वस्तु के हिसाब से वस्तु के सभी गुण उसमें आ गए. मैं एक मौजूदगी वाली वस्तु हूं, यानी कि चैतन्य स्वरूप से मेरा अस्तित्व है. मेरा अस्तित्व चैतन्य रूप से है. जड़ रूप से मेरा अस्तित्व नहीं है. परमाणु का अस्तित्व जड़ रूप से है, मेरा अस्तित्व चैतन्य रूप से है क्योंकि मैं आत्मा हूं, इसलिए तो ऐसे पहले प्रथम ग्रहण करें कि मेरी मौजूदगी है, मेरी मौजूदगी है, वो बात को ग्रहण करें, मौजूदगी है उसमें सब अनंत गुण है, वस्तु की मौजूदगी में सब गुण आ जाते हैं। अगर वस्तु ही नहीं है तो बात कोई रहती नहीं है। तो पहले मौजूदगी का स्वीकार करें, फिर यह पदार्थ कैसा है, मौजूदगी है मेरी तो मैं कैसा हूं, तो कहते हैं कि ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरा हुआ हूं। ज्ञान आनंद मुख्य गुण दिया, लेकिन ऐसे ऐसे अनंत गुणों से मैं भरा हुआ हूं। एक गुण वाला नहीं, मतलब ऐसे बहुत गुणों से मैं भरा हुआ हूं। ऐसे ज्ञान आनंद आदि से भरपूर मेरा अस्तित्व है, मेरे अस्तित्व में अनंत गुण से भरपूर भरा हुआ मैं पदार्थ हूं। उसमें ज्ञान रूप से, आनंद रूप से, ऐसे अनंत गुण रूप से मेरा अस्तित्व एक साथ आ जाता है। अलग अलग अस्तित्व नहीं है सब गुणों का, एक अस्तित्व में सभी गुण आ जाता है। हाँ, यथार्थ ग्रहण भाव भाषण में होता है, निश्चित होना मैंने भाव भाषण होना। अभी देखते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि पहले विचार की भूमिका में भी ये बात तो आनी चाहिए, फिर प्रयोग से ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रश्न यथार्थ ग्रहण की बात है, सिर्फ समझ की बात नहीं है। ग्रहण की बात होने से वो भावभाषण का स्टेज होता में ही होता है, ग्रहण तो भावभाषण में ही होता है। आगे कहते हैं, ऐसे जगत में सभी वस्तु सत है, जैसा मैं एक पदार्थ सत हूं, सत मैंने मौजूदगी वाला, ऐसे सभी पदार्थ भी सत है। अपना सत से सभी पदार्थ का अस्तित्व का भी स्वीकार हुआ। अब कहते हैं कि आत्मा की हयाति ही न हो, यदि आत्मा की मौजूदगी ही नहीं हो, तो फिर ज्ञान आनंद आदि सब गुण किस में होवे, मौजूदगी होवे उसमें होवे ने, पर होवे भी कहाँ, मौजूदगी है वहां सब गुण है। यदि वस्तु की हयाति होती है तो उसमें गुण होते हैं, परंतु जिसके मौजूदगी ही नहीं, मौजूदगी होती है तो उसमें सब गुण होते हैं, परंतु जिसकी मौजूदगी नहीं उसमें गुण फिर कैसे हो सकते हैं, मौजूदगी नहीं तो गुण कैसे हो सकते हैं। यदि शाश्वत वस्तु ही नहीं तो ज्ञान और आनंद रहेगा किसमें, या ज्ञान आनंद किसमें रहेगा, कि वस्तु की मौजूदगी है तो उसमें रहता है वस्तु, मैंने आत्मा। और कहते हैं कि वेदन किसमें होएगा, बात वहां ले गए, कहां ले गए, वेदन किस में होगा? वेदन माने अनुभव किस में होगा? देखिए सभी जीव को अनुभव चालू है, फिर मिथ्यात्व अवस्था में संसार अवस्था में गलत अनुभव है, लेकिन अनुभव तो है ही। सही अनुभव, यथार्थ अनुभव और गलत अनुभव, दोनों में अनुभव तो सामान्य है। गलत और यथार्थ वो तो उसकी विशेषता है, अनुभव की विशेषताएं हैं, अनुभव तो उसमें सामान्य है। वस्तु का अस्तित्व वेदन से ग्रहण किया जाता है, अनुभवान से होती है। क्यों ऐसा? क्यों वेदन से क्यों ग्रहण किया जाता है, अन्य प्रकार से क्यों नहीं? कि जो जानना होता है वस्तु का, वो अस्तित्व जाना नहीं जा रहा, वेदन किया जाता है। क्यों? कि हमारे पास पांच इंद्रिय और छठा मन जानने का काम करता है, उसके सिवा हमारे पास जानने का कोई साधन नहीं है। और ये छह साधन रूपी पदार्थ को विषय करता है। ये छह साधन किसको विषय करता है? सिर्फ रूपी पदार्थ को विषय करता है, और आत्मा आरोपी है। कैसे जाना जाएगा? जाना नहीं। लेकिन जो ज्ञान वेदन है, उस वेदन से अपनी मौजूदगी महसूस होती है। क्या? ज्ञान के वेदन से अपनी मौजूदगी वेदन गोचर होती है, अनुभव गोचर होती है, एक मैं हूं। बाकी देखने में नहीं आएगा अस्तित्व, रूपी होने से देखने में नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा, स्पर्श होने में नहीं आएगा। और मन में तो तर्क विचार अनुमान लगता है, वो यथार्थ है? वो यथार्थ नहीं है, समझ होती है लेकिन ग्रहण नहीं होता। ग्रहण तो वेदन से ही होता है। जीव को अनंत काल गया, अनंत काल गया, अनंत जन्म मरण भी किए, अनंत काल में अनंत जन्म मरण भी किए, परंतु नायक का अस्तित्व नायक रूप से ही रहा है। आत्मा जो नायक पदार्थ है, उसका अस्तित्व है, वो नायक रूप से रहा है, उसमें कोई फेरफार नहीं हुआ। अनंत काल में अनंत जन्म मरण हुए, उसमें मनुष्य की अवस्था हुई अनंत बार, तिरियंज की अनेक प्रकार की अवस्था होती है, वो भी अनंत बार हुई, वो भी अनंत बार हुई, अनेक प्रकार के देव भी अनंत बार हुआ, और नारकी भी अनंत बार हुआ। आत्मा जो नायक तत्व है, वो नायक रूप से ही रहा है। उसका अस्तित्व नायक रूप से जो है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे सोना सोने की धातु है, मूल धातु जो सोना है, उसमें चांदी की मिलावट करते हैं, तांबे की मिलावट करते हैं, और भी कई प्रकार के धातु की मिलावट होती है, पंच धातु कहते हैं ना। लेकिन मूल में जो सोना है वो सोना रहता है।
हेलो हेलो,
मूल में जो सोना है वो सोना ही रहता है। सोना पलट करके अन्य धातु रूप कभी नहीं हो जाता। इसलिए अगर हम चाहें तो अलग सोना मिलावट किया है उसमें भी अलग सोना प्राप्त कर सकते हैं, चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे धातु की मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। मैंने गर्म करते हैं तो गल जाती है धातु, अलग अलग अग्नि के डिग्री में अलग अलग धातु गलती है। सोना जल्दी नहीं गलता है, सोना जल्दी नहीं गलता है तो सोना रह जाता है, दूसरी धातु गल जाती है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सोना सोना रहा था, सोना पलट करके अन्य धातु रूप कभी नहीं हुआ था। वैसे आत्मा चार गति में अनंत अनंत प्रकार के भव भ्रमण किया, लेकिन मूल स्वरूप में जो नायक तत्व है वो नायक तत्व ही रहा है, उसमें कोई फेरफार नहीं हुआ। ये वस्तु की सुंदरता है कि मिलावट होती नहीं है। नायक की नायक रूप से हियाति कभी भी छूटती नहीं, नायक की नायक रूप से मौजूदगी है वो कभी छूट जाती नहीं। कितना भी परिभ्रमण में कैसे भी प्रकार के भाव हो, भाव भावांतर बहुत हुए, लेकिन नायक रूप से जो मौजूदगी है वो कभी छूट जाती है और अन्य रूप आत्मा हो जाए कोई, ऐसा कभी नहीं बनता। भव्य का तो नहीं, ए भव्य का भी ऐसी बात है। भले ही अभव्य का आत्मा अनंत काल भव भ्रमण करता रहेगा, वैसे तो भव्यों का भी भ्रमण करता रहेगा, जिसका मुक्ति होने वाली नहीं है। अच्छा है कि हम लोग इसमें से नहीं है क्या बाकी अनंत आत्माएं ऐसे हैं, भवी और अभवी दोनों अनंत ऐसे हैं कि जिसकी मुक्ति कभी होने वाली है ही नहीं, ऐसा। हाँ,
तारीख 8/6/1986 श्री अनुभव प्रकाश ग्रंथ पर पूज्य भाई श्री शशि भाई नु भावनगर मा प्रवचन, सड़ंग प्रवचन नंबर 146।
लेकिन भवी और अभवी दोनों अनंत रहने वाले हैं, कितने दोनों अनंत रहने वाले, ऐसे नहीं कि भवी कम हो जाएंगे और अभवी अनंत रहेंगे, ऐसे नहीं, दोनों अनंत रहने वाले हैं, जिसकी कभी मुक्ति नहीं होगी और इसका कोई इलाज भी नहीं है। अच्छा है कि हमारे हाथ में इलाज आ गया और हमारी मुक्ति होने वाली है, तो अच्छा हो गया। बाकी वस्तु मूल है उसमें कोई फर्क होता नहीं है, मूल वस्तु में कोई फर्क नहीं होता, वो वैसी की वैसी समो की रहती है। नायक रूप से हियाति कभी छूटती नहीं, नाश पामती नहीं, नायक रूप से उसका नाश कभी होता नहीं। यह इसका भाव है, यह इसका भाव है, सत का वो भाव है, सत चिदानंद का वो भाव है कि नायक रूप से सच्चिदानंद शब्द लिया ने, उसका वो भाव है कि नायक रूप से वो हमेशा हमेशा मौजूद रहता है, उसमें फेरफार होता नहीं है। ऐसे अस्तित्व, ऐसा अस्तित्व का महिमा है, अस्तित्व का ऐसा महिमा है। और यह ग्रहण होते ही, अस्तित्व ग्रहण होते ही द्रव्य गुण पर्याय समों का ज्ञान एक साथ हो जाता है, अभेद ज्ञान होता है अस्तित्व ग्रहण में, और उसमें सभी यथार्थ भेद ग्रहण हो जाता है, अभेद में भेद समाविष्ट है, अलग उपयोग देना पड़ता नहीं है, उस वक्त हो जाता है। वैसे तो अस्तित्व ग्रहण पहले के स्थिति को समझें तो गर्भित रूप से द्रव्य गुण पर्याय की बात कैसे आती है वो समझने लायक है, कि जैसे मैं धर्म के क्षेत्र में नहीं था, पहले व्यापार आदि अपने उदय के क्षेत्र में था, ठीक बात है, अब मैं धर्म के क्षेत्र में आया तो क्यों आया, कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो वर्तमान हालत है वो ठीक नहीं है, वो ठीक करने के लिए मैं आया। ठीक नहीं है उसमें बहुत बात है, कि ठीक नहीं है उसमें मैं सुखी नहीं हूँ, दुखी हूँ, इसलिए मुझे दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, और अनेक प्रकार के दोष होते हैं वो भी ठीक नहीं लगता। आत्मा अंदर से रेजिस्ट करता है, उसको रेजिस्टेंस पावर है ना, प्रतिकार शक्ति स्वयं निर्दोष स्वभावी होने के कारण है, दोष का प्रतिकार हर आत्मा को भीतर में हो जाता है, होता ही रहता है। तो मैं ठीक नहीं हूं और मुझे ठीक होना है, वो अवस्था का ज्ञान हुआ। अब कौन से बात बाकी रहेगी, कि जो त्रिकाली तत्व है, त्रिकाली अस्तित्व है, वही समझ में नहीं आया। तो ध्रुव अस्तित्व ग्रहण किया तो पर्याय का तो ज्ञान पहले था ही, अवस्था का ज्ञान तो पहले था ही, ध्रुव का समझ आया कि मैं त्रिकाल रहने वाला पदार्थ हूं, तो जो त्रिकाली और वर्तमान दोनों मिलकर के पूरा पदार्थ का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे हो जाता है, एक बात। दूसरी बात वो है कि जब मुझे मेरी अवस्था ठीक नहीं है उसको ठीक करनी है तो अवस्था पलटेगी, मैं तो वही का वही रहूंगा, मैं तो जो हूं सो ही रहूंगा, मेरी अवस्था में मैं फेरफार करूंगा, मैं ही रहूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अवस्था पलटेगी, मैं पलटूंगा नहीं, मैं तो मैं ही रहूंगा, मेरी अवस्था का पलटा होगा, मैं वो कब ही रहूंगा। तो उसमें भी गर्भित रूप से ध्रुव का स्वीकार आ जाता है, आता है कि नहीं आता है? इस तरह से अस्तित्व ग्रहण में, जब अस्तित्व ग्रहण में भावभाषण होता है, तब ज्ञानमय ज्ञान मात्र मैं हूं और सर्व से सर्वथा सर्वथा भिन्न हूं, ऐसा जो अपना अस्तित्व का गुण समेत ज्ञान होता है, क्योंकि वहां स्वभाव का ज्ञान होता है, अस्तित्व ग्रहण में स्वभाव का ज्ञान होता है, स्वभाव मैंने गुण, तो द्रव्य तो मैं, गुण मैंने स्वभाव, और जो अवस्था का ज्ञान तो अनादि से है, ऐसा हुआ मैं पलटता हूँ, तो एक साथ तीनों ज्ञान हो गया। इसलिए अस्तित्व ग्रहण होते ही द्रव गुण पर्याय सबों का ज्ञान साथ साथ एक साथ अभेद रूप से हो जाता है। अब उसके सामने प्रश्न उठाया है कि पदार्थ में ज्ञान और आनंद कहने से ऐसे भाव दिखते हैं, परंतु सत कहने से उसमें कोई भाव दिखता नहीं है। क्या प्रश्न है कि ज्ञान और आनंद तो एक विशिष्ट प्रकार के भाव हैं, इसलिए समझ में आते हैं, लेकिन सत कहने से तो भाव समझ में नहीं आता। तो बात यथार्थ है, क्योंकि वो तो मन से पकड़ में आता नहीं, इंद्रियों से पकड़ में आता नहीं, वेदन से ही पकड़ में आता है अस्तित्व। इसलिए प्रश्नकार का प्रश्न को ठीक है, बेंत्री का उत्तर है। आनंद में वेदन और ज्ञान में जानने का गुण है, इसलिए ऐसे भाव से भरे हुए दिखते हैं। ऐसे अस्तित्व भी दुखा और खाली नहीं है, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरा हुआ अस्तित्व है। तो क्या लिया उसने, ज्ञान वेदन पकड़ने में नहीं आवे तो आनंद का वेदन ले लिया, वो तो अलग पड़ता है ना, आनंद तो अनुभव की चीज है। तो आनंद में मुख्य बने से वेदन ले लिया यहाँ, क्योंकि यहाँ तो समझाना है ना, और ज्ञान में जानने का गुण है, ये दोनों स्वभाव है। तो अस्तित्व ऐसे स्वभाव से भरा हुआ है, तो अस्तित्व मैंने अकेला अस्तित्व नहीं लेना है, वेदन से तो वो ग्रहण होता है, और ग्रहण होता है तो जानने में भी आ जाता है कि ऐसा ग्रहण हुआ, ऐसा मेरा अस्तित्व, ऐसा जाना भी साथ साथ। वेदन से वेदन गोचर हुआ, इन्हें वेदन से जानना में आ गया। तो अस्तित्व है तो उस प्रकार से स्वभाव समेत जानने में आता है, अकेला अस्तित्व जानने में नहीं आता, स्वभाव समेत जानने में आता है, और स्वभाव है तो गुण है। इसलिए अस्तित्वमयी पूरा पदार्थ स्वभाव के साथ जानने में आता है, पहले नहीं जाना था अब जाना, वो अवस्था है, स्वभाव है वो गुण है, और पूरा पदार्थ उससे भरा हुआ है। ऐसा पदार्थ द्रव गुण पर्याय तीनों जानने में, तीनों का यथार्थ ज्ञान हुआ है। इस तरह से ऐसे तो विषय थोड़ा अनुभव से ज्यादा समझ में आए ऐसा है, भाषा में वो बात मर्यादित अवश्य आती है, उसी का प्रयोग में वो बात बराबर समझ में आ जाती है। जैसे अग्नि में उष्णता गुण है, जैसे अग्नि में उष्णता गुण है और पानी में शीतलता गुण है, तो उसके गुण से दूसरे को पकड़ने में आता है आत्मा को, दूसरे को मैंने जीव को, अग्नि और पानी समझ में आता है, कहाँ से उसके गुण से समझ में आता है। वैसे आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, वैसे आत्मा भी गुण से समझा जाता है, क्यों कि गुण है वो वस्तु की विशिष्टता है, वस्तु उसका विशेष्य है, विशिष्टता से विशेष्य को समझ में लिया जाता है। इस तरह से दृष्टांत दिया पानी और अग्नि का, दृष्टांत लिया। वैसे आत्मा नायक स्वरूप है, आत्मा गुण ले लिया, उसका स्पेसिफिक गुण ले लिया ज्ञान, जहां से वो भिन्न पड़ता है और भेदन में आता है कि आत्मा नायक स्वरूप है। नायक का अस्तित्व धारण करता है वो आत्मा है, और जो जानता नहीं है वो जड़ है। जानता है वो आत्मा है, जानता है यहाँ से जानने वाले का अस्तित्व लिया, और नहीं जानता है वो जड़ है। ऐसे दोनों अपने अपने गुण से पकड़ने में आता है या ग्रहण होते हैं। गुण से ग्रहण होता है, बिना गुण किसी भी पदार्थ का ग्रहण होना संभव नहीं है। बताइए आप, किसी भी पदार्थ इसके गुण से ही ग्रहण होगा ना, और उसमें भी खास गुण से ग्रहण होगा। जैसे पानी लिक्विड है, तो बहुत से ऐसे लिक्विड होते हैं, लेकिन पानी शीतल है यहां से पानी समझा जाता है उस तरह से। हाँ, प्रश्न हुआ मतलब पानी और अग्नि के गुण से बीजा ने मैंने जीव को पकड़ने में आता है। पानी और अग्नि इसके गुण से किसको पकड़ने में आता है? जीव को पकड़ने में आता है। पानी पानी को नहीं समझता, अग्नि अग्नि को, वो तो दूसरा जीव। अग्नि दृष्टांत है। એવી રીતે આત્મા જ્ઞાયક રૂપથી પોતે પોતાને જણાય છે, કેમ કે ઓલું જળ છે એ તો પોતાને જાણે નહીં, પણ એને જાણવા માટે એના ગુણથી કોઈ બીજો એને જાણી લે છે, એમ આત્મા જ્ઞાન ગુણ છે અપને આપકો જાન લેતા હૈ, વો અપને આપકો જાન લેતા હૈ, વો દૂસરે કો જાનને કી વહાં બાત નહીં હૈ, દ્રષ્ટાંત મેં હૈ વો બાત વહાં नहीं है। दृष्टांत में तो उतनी की बात है, पॉइंट उतना ही है कि गुण से जाना जाता है, वैसे ज्ञान गुण से आत्मा भिन्न जाना जाता है। और एक प्रश्न किया है कि आत्मा का स्वरूप बोलने में जितना सहज दिखता है, मैंने सरल दिखता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद गुण वाला पदार्थ है, बोलने में तो बहुत आसानी से आ जा, सहज मैंने आसान, उतना सहज हमको प्राप्त हो सकता है क्या? उतना आसानी से उसकी प्राप्ति हो सकती है क्या? ऐसा प्रश्न उठाया। समाधान, स्वभाव सहज है। क्या स्वभाव तो सहज ही है, और अपना स्वरूप है वो, जो सहज है वो अपना स्वरूप है, इसलिए कोई स्वरूप को नया पैदा करने की तो बात है नहीं, इतना तो कोई परिश्रम है नहीं, जो है उसको देखना है। काम कितना है? सिर्फ देखने का, अवलोकन करने का, उतना ही काम है। अपने रूप से देखो, स्वभाव को ग्रहण करके अपने रूप से देखो। अपने रूप में नहीं, अपने रूप देखो, दूसरे के रूप में नहीं, आत्मा में नहीं, कोई दूसरा थर्ड पर्सन नहीं, हाँ खुद है फर्स्ट पर्सन। मैं ज्ञायक आत्मा हूं ऐसा देखो, दूसरे की बात नहीं चल। स्वभाव सहज है, परंतु अनादि का विभाव में पड़ा हुआ है। एक तकलीफ क्या है कि अनादि से विभाव में तन्मय होकर के अपने आप को अनुभव कर रहा है, ये उल्टी परिस्थिति है, वो तकलीफ देती है। बाकी वस्तु तो अंदर में है, सो सहज ही है, इसलिए वो सहज दिखने में नहीं आता। होने पर भी दिखने में क्यों नहीं आता कि विभाव में पड़ा हुआ है, विभाव में डूब गया है, विभाव में पड़ा है मतलब विभाव में डूब गया है। देखो अभी देखो ना, मैं मनुष्य हूं ऐसा अनुभव होता है, मैं फलाना फलाना मनुष्य हूं, क्या ऐसा आत्मा है? नहीं। लेकिन कितना तन्मय है उसमें कि ऐसे विभाव को मिटाना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? कितना डूबा हुआ है, इसलिए अंदर में जो सहज स्वरूप है वो दिखता नहीं है। उसका ज्ञान आनंद अस्तित्व वस्तुत्व आदि सभी गुण अनादि अनंत सहज है। वस्तु सहज है तो इसके सब गुण है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टीज भी अनादि अनंत सहज है। वैसे ही वस्तु होते भी सहज है, किसी ने बनाई नहीं है, मूल वस्तु को किसी ने बनाई नहीं है। जैसे सोना किसी ने बनाया नहीं, वो खानी में सोना दिशे है, पड़ा है बराबर, कोई बनाया बनाया नहीं है। जो स्वभाव होता है वो सहज होता है, जो स्वभाव होता है वो सहज होता है, तथा अपने स्वभाव में जाना वो भी सहज है। स्वभाव में जाना मतलब क्या? स्वभाव रूप परिणमन करना वो भी सहज है, वो भी कृत्रिमता से नहीं होता। क्यों सहज है? कि जो भी ज्ञानादि स्वभाव है ना, उसका स्वभाव रूप परिणमन करने का स्वभाव है, परिणमन करना उसका स्वभाव है, वस्तु का परिणमन करना स्वभाव है, इसलिए परिणमन अनादि अनंत चालू रहता है। अब कहते हैं कि जो स्वभाव है वो तो स्वभाव रूप से परिणमन करने का स्वभाव है, इसलिए वो सहज है। यहां से एक बात निकलती है, एक बहुत गुप्त बात है, वो यहां से निकलती है कि जो आत्मा, कोई भी संसारी आत्मा अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, ऐसा संसारी आत्मा जब एकांत अपना आत्म कल्याण का निर्धार करता है, तो उसका आत्म कल्याण होने के कार्य में उसको मदद करने वाला उसका स्वभाव है। अंदर से फेरफार होने लगता है, फिर ज्ञानी सत्पुरुष गुरु शास्त्र तीर्थंकर देव जैसा योग होता है, निमित्त मिलता है, अलग बात है। लेकिन अंदर से आत्मा इनके स्वभाव में से स्वभाव का परिणमन होने की तैयारी करने लगता है। सड़बड़ाहट अंदर से थवा मंडे जब कल्याण का निर्धार करे। सड़बड़ाहट को हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, वो जैसे सर्प सोया हुआ थोड़ा हिलता है ना, वो अंदर से स्वभाव हिलने का चालू कर देता है और वही मदद करता है। लेकिन ईमानदारी से अपना आत्मकल्याण का निर्धार होना और ईमानदारी से ये संसार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और किसी हालत में भी मुझे नहीं चाहिए, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए, बस प्रमाणिकता का काम है। अंदर से स्वभाव मदद करेगा, बंद हो जाएगा विपरीत प्रेरणा में, सब बंद हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव सहज है। ये सहज में वो बात गर्भित है, सहज में वो बात गर्भित है। क्या विपरीत मान्यता छोड़ने से स्वभाव अनुभव में आ सकता है? हाँ, विपरीत मान्यता छोड़ने से स्वभाव अनुभव में आ सकता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं, मैं फलाना फलाना कोई चीज, मैं पुरुष भी नहीं, मैं स्त्री भी नहीं, मैं कोई नहीं, मैं एक आत्मा, मैं फलाना फलाना हूँ, वो विपरीत मानता है, छोड़ने से आता है अनुभव में, वो बात जरूर है। हाँ, सहज अंदर से परिणमन करे, व्यापार करे, वही मार्ग है। मार्ग तो सहजता का है, उसमें कोई सहज स्वभाव में वाद विवाद करे वो अंधा है। जैसे अग्नि का स्वभाव गर्म है, अब कोई वाद विवाद करे, अग्नि गर्म क्यों? कोई स्वभाव है गर्म क्यों, वो कोई प्रश्न है क्या? तो वो सहज स्वभाव के विषय में जो तर्क कुतर्क वितर्क उठाता है, वो स्वभाव को नहीं देखने वाला अंधा है, ऐसा कहते हैं। क्या कहा इधर? जो स्वभाव होता है वो सहज होता है, तथा अपने स्वभाव में जाना, मैंने स्वभाव रूप परिणमन करना, ये भी सहज है। पर पदार्थ को अपना करना वो तो अशक्य है, असहज नहीं, वो तो अशक्य है, कर ही नहीं सकते कोई, तो कितना भी ममत्व करे नहीं। हमारे जीव ने और सभी संसार के अनंतों जीव ने अनंत काल से पर पदार्थ को अपना करने का पुरुषार्थ किया, एक परमाणु किसी जीव का हुआ नहीं। कितना भी ममत्व कर लो, मैं अपना कोई होने वाला है ही नहीं, ये वस्तु स्थिति है। और स्वभाव रूप परिणमन करना सहज है, निर्धार कर लो बस, यूं काम हो जाएगा। ऐसे वस्तु में अपने को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक सुविधा है, इतनी सुविधा कहीं भी नहीं है, ऐसी वस्तु है। बहुत आशास्पद बात है ये, अपने कार्य करने के लिए बहुत आशास्पद बात है, विशेष लिंग और माता।